नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुख के बीच M&M, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC जैसे शेयरों में बढ़त के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 110 अंक से अधिक बढ़ गया। सेंसेक्स हालांकि कमजोर रुख के साथ खुला, लेकिन शुरुआती सौदों में गिरावट की भरपाई करते हुए 30 शेयरों वाला BSE सूचकांक 111.88 अंक बढ़कर 58,499.81 पर पहुंच गया। व्यापक NSE निफ्टी 25.70 अंक बढ़कर 17,423.20 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2% की बढ़त महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुई। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और मारुति बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ICICI बैंक में गिरावट हुई। अन्य एशियाई बाजारों में टोक्यो और शंघाई में तेजी थी, जबकि सियोल और हांगकांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंच मार्क ब्रेंट क्रूड 0.21% बढ़कर $95.12 प्रति बैरल के भाव पर था। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल अपनी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई वेतन नहीं लिया। अंबानी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते व्यापार और अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के कारण स्वेच्छा से अपना पारिश्रमिक छोड़ दिया था। RIL ने अपनी ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंबानी का पारिश्रमिक शून्य था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने जून 2020 में स्वेच्छा से 2020-21 के लिए अपने वेतन को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते ये फैसला किया, जिसने देश के आर्थिक और औद्योगिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। अंबानी ने 2021-22 में भी अपना वेतन नहीं लिया। उन्होंने इन दोनों वर्षों में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए रिलायंस से किसी भी भत्ते, अनुलाभ, सेवानिवृत्ति लाभ, कमीशन या स्टॉक विकल्प का लाभ नहीं उठाया। इससे पहले उन्होंने एक व्यक्तिगत उदाहरण पेश करते हुए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के वेतन को 2008-09 से 15 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया था। उनके चचेरे भाई निखिल और हीतल मेसवानी का पारिश्रमिक 24 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रहा, लेकिन इस बार इसमें 17.28 करोड़ रुपए का कमीशन शामिल था। कार्यकारी निदेशक PMS प्रसाद और पवन कुमार कपिल के पारिश्रमिक में मामूली गिरावट हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक सेतुरमन पंचनाथन के साथ मुलाकात में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने अपने कई ट्वीट में इस बैठक की जानकारी दी। इसके मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। गत मई में टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा, दोनों पक्षों ने AI, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, कृषि और स्वास्थ्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में आपसी साझेदारी बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दिया। पंचनाथन ने संकेत दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से 6 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्रों के तहत जल्द ही कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं सीतारमण ने पेटेंट प्रक्रियाओं में सुधार और कृषि में उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उन्नति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने में भारत की उपलब्धि के बारे में बात की। कोविड संबंधी पाबंदियों से उबरने की कोशिश में लगे चीन के निर्यात में वृद्धि जुलाई में भी जारी रहने से उसका व्यापार अधिशेष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चीन के सीमा शुल्क विभाग ने रविवार को जारी आंकड़ों में कहा कि जुलाई में निर्यात एक साल पहले ही समान अवधि के मुकाबले 18% बढ़कर $333 अरब पर पहुंच गया। वहीं जून 2022 की तुलना में पिछले महीने निर्यात आंकड़े में 17.9% की तेजी दर्ज की गई है। हालांकि आयात आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में जुलाई 2022 में 2.3% ही बढ़ा है। ये अर्थशास्त्रियों के 4% वृद्धि के अनुमान से कम है। इससे चीन में कमजोर घरेलू मांग का संकेत मिलता है। निर्यात बढ़ने और आयात में मामूली वृद्धि होने से जुलाई में चीन का व्यापार अधिशेष बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड $101.3 अरब पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए रविवार को कहा कि ये भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अलावा वैश्विक अगुवा बनाने में भी मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की यहां आयोजित बैठक में आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों से 3T को प्रोत्साहन देने का आग्रह भी किया। संचालन परिषद की 7वीं बैठक खत्म होने के बाद जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा, हमें लोगों को जहां भी संभव हो स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा ना होकर एक साझा लक्ष्य है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक अगुवा बनाने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में स्वावलंबी बनने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन यापन को सुगम बनाने, सेवा की पारदर्शी आपूर्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर तीव्र गति से जारी शहरीकरण भारत के लिए कमजोरी के बजाय एक ताकत बन सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।